14 अक्टूबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फतर। अर्थशास्त्र का नोबेल भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी को।
Get us to something that I think is of interest also in the local context, which is, does bad economics make good politics?
कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल। बात करेंगे एनसीपी नेता शरद पवार से।
370 हटाए अच्छी बात की। हमारा कहना एक है कि 371 भी हटाइए। वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी हटाने की बात करिए।
और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारतीय मूल के अमरीकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बैनर्जी, उनके साथ इश्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से ये सम्मान देने की घोषणा की गई। इन तीनों को दुनिया भर में गरीबी दूर करने की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए ये सम्मान दिया गया है। कुर्द बलों के साथ समझौता होने के बाद सीरियाई सरकार ने उत्तर पूर्वी इलाकों में नई जगहों पर सैनिकों की तैनाती की है। वो सीमा के साथ लगते इलाकों पर तुर्की के हमलों का जवाब दे रहे हैं। अपने सहयोगी अमरीकी सैनिकों के हटने के बाद तुर्की की ओर से किए जा रहे हमलों के कारण कुर्दों को राष्ट्रपति बशर अल असद से मदद मांगनी पड़ी थी। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अमरीका को फिर से उलझाने के लिए कुर्द जानबूझकर सीरिया में पकड़े गए इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को रिहा कर सकते हैं। ब्रितानी संसद को संबोधित करते हुए महारानी ने ब्रेग्जिट के बाद सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा रखी है। सरकार का कहना है कि ब्रिटेन को 31 अक्टूबर से पहले यूरोपीय संघ से निकालना उसकी प्राथमिकता है। महारानी ने कहा,
My lords and members of the House of Commons, my government's priority
हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों, सरकार की प्राथमिकता हमेशा से यूनाइटेड किंगडम को 31 अक्टूबर से पहले यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की रही है। मेरी सरकार को उम्मीद है कि मुक्त व्यापार और दोस्ताना सहयोग के आधार पर यूरोपीय संघ के साथ नई साझेदारी शुरू की जाएगी। ये थे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शब्द। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि सरकार विरोधी ऑनलाइन फोरम चलाने वाले ईरान के एक निर्वासित विपक्षी नेता को वो गिरफ्तार करके देश ले आए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि रूहुल्ला जाम को गिरफ्तार करने के लिए एक गोपनीय खुफिया अभियान चलाया गया था। जाम पिछले कुछ सालों से फ्रांस में रह रहे थे। ईरान ने फ्रांस पर जाम की मदद का आरोप भी लगाया है। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने कैटलोनिया के स्वतंत्रता समर्थक 9 नेताओं और प्रदर्शनकारियों को 2017 में आज़ादी की नाकाम कोशिश में भूमिका निभाने के लिए जेल की सजा सुनाई है। इन्हें राजद्रोह का दोषी पाया गया है। निर्वासन में रह रहे कैटलोनिया के नेता कार्ल्स पुचदमोंट ने इस फैसले का विरोध किया है। स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनकारी कैटलोनिया में कई जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। बार्सिलोना में एक महिला ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद लोग अब और भी ताकत से लड़ेंगे। स्पेन सरकार का हमारे राजनेताओं को जेल में डालना और हमारी सरकार पर बंदिशें लगाना दिखाता है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हम हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सजा न्याय संगत नहीं है और ये इस कमजोर लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म की बात है। ये थे कैटलोनिया की आजादी की समर्थक एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान में हगिबस तूफान से मची तबाही के बाद हजारों सैनिक राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। जापान में कई सालों के बाद इतनी तीव्रता वाला कोई तूफान आया है। अभी तक 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई कस्बों में पानी भरा हुआ है। सोमालिया 2 दशक से भी अधिक समय बाद अपना पहला ब्लड बैंक खोलने जा रहा है। इस ब्लड बैंक में 10,000 यूनिट खून रखा जाएगा। प्रधानमंत्री हसन अली खेरे ने कहा कि धमाकों की चपेट में आने के बाद खून बहने के कारण बड़ी संख्या में सोमालिया के नागरिक, खासकर महिलाएं और मजदूर अकारण मारे गए। सोमालिया में पिछले 30 सालों से जारी गृहयुद्ध के कारण अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पोलैंड की सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी रविवार को हुए संसदीय चुनाव के बाद फिर से बहुमत हासिल करने जा रही है। अभी तक 90% से अधिक वोटों की गिनती हो गई है और लॉ एंड जस्टिस पार्टी को निचले सदन के लिए 45% वोट मिले हैं, जो कि निकटतम प्रतिद्वंदी से 18% अधिक हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बैनर्जी व उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को ग्लोबल गरीबी के लिए अपने प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी कोलकाता के मूल निवासी हैं। पिछले साल भी नोबेल के लिए उनका नाम नामांकित किया गया था। और ब्यौरा दे रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
Get us to something that I think is of interest also in the local context, which is, does bad economics make good politics? And so that's something that we'll come back to at the end.
ये आवाज है भारतीय अमरीकी अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी की, जो बता रहे हैं कि बुरी अर्थव्यवस्था से अच्छी राजनीति होती है। अभिजीत बनर्जी को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिजीत और 46 वर्षीय डुफ्लो एक साथ ही MIT में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, जबकि क्रेमर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अपने बयान में कहा है, 2019 के अर्थशास्त्र पुरस्कार के इन विजेताओं ने ऐसे शोध किए जो वैश्विक गरीबी से लड़ने की हमारी क्षमता में काफी सुधार करता है। इस बयान में आगे कहा गया है कि सिर्फ 2 दशकों में इनके नए शोध के जरिए अर्थशास्त्र के विकास को बदल दिया है, जो अब रिसर्च का एक उत्कृष्ट क्षेत्र है। अमरीकी नागरिक 58 वर्षीय अभिजीत बनर्जी ने साल 1981 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया। बनर्जी ने 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की। उनके PhD का विषय सूचना अर्थशास्त्र में निबंध था। उनके पिता दीपक बनर्जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां निर्मला बनर्जी सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कलकत्ता में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थीं। PhD करने के बाद अभिजीत बनर्जी कई जगह फेलो रहे और उन्हें अनगिनत सम्मान मिले। साथ ही साथ वो अध्यापन और रिसर्च का अपना काम करते रहे। उन्होंने 1988 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। 1992 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। इसके बाद 1993 में उन्होंने MIT में पढ़ाना और शोध कार्य शुरू किया, जहां पर वो अभी तक अध्यापन और रिसर्च का काम कर रहे हैं। इसी दौरान 2003 में उन्होंने MIT में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब की शुरुआत की और वो इसके डायरेक्टर बने। यह लैब उन्होंने ईस्टर डुफ्लो और सेंथिल मुल्लैनाथन के साथ शुरू की। ये लैब एक वैश्विक शोध केंद्र है जो गरीबी कम करने की नीतियों पर काम करती है। ये लैब एक नेटवर्क का काम भी करती है, जिससे दुनिया के विश्वविद्यालयों के 181 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। 2003 में ही बनर्जी को अर्थशास्त्र का फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर बनाया गया। अभिजीत बनर्जी की अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में रुचि है, जिसमें से 4 अहम हैं। पहला आर्थिक विकास, दूसरा सूचना सिद्धांत, तीसरा आय वितरण का सिद्धांत और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। बनर्जी अब तक 5 किताबें लिख चुके हैं और 6ठी किताब आने वाली है, जिसका नाम व्हाट द इकोनॉमिक्स नीड नाउ है। इसके अलावा उनकी एक किताब गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुकी है। किताब और लेख लिखने के अलावा अभिजीत बनर्जी ने 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्देशन भी किया है।
अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल। कश्मीर में आज दोपहर 12 बजे से पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल हो गई है। इसके साथ ही पूरी वादी में 40 लाख पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन चालू हो गए। हालांकि 20 लाख के करीब प्री पेड मोबाइल फोन और मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल निलंबित रहेगी। मैंने थोड़ी देर पहले श्रीनगर फोन कर BBC संवाददाता रियाज मसरूर से संपर्क किया और पूछा कि सरकार के इस कदम से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा।
वाकई ये बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को, क्योंकि 10 हफ्तों से लोग न तो अपने परिवार वालों के संपर्क में थे और न उन लोगों के जो उनके अपने प्यारे अपने भाई बंधु जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनके साथ भी नहीं था। बहुत बड़ा जो है वाकया है ये अपने आप में, क्योंकि पेशेंट केयर भी सफर हो रहा था, स्टूडेंट सफर कर रहे थे, स्कूल नहीं खुल पा रहे थे क्योंकि पेरेंट्स जो है वो इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि उनका ड्राइवर के साथ या स्कूल अथॉरिटीज के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये मामला ये है कि अभी भी लोगों की डिमांड है कि इंटरनेट पर चूंकि प्रतिबंध अभी जारी है, तो उस प्रतिबंध को अगर हटाया जाए तो जो जॉब लॉसेस हुए हैं 2.5 महीने में, हो सकता है उनमें कोई फर्क पड़े।
ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की जो बात की जा रही थी, आपको लगता है कि ये एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है इसमें कुछ करने की?
क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि 60 लाख से ज्यादा फोन सब्सक्राइबर्स हैं कश्मीर वैली में, जिसमें से सिर्फ कोई 40 लाख सब्सक्राइबर्स पोस्ट पेड हैं। तो अभी भी 20 लाख से ज्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके फोन नहीं चलेंगे, क्योंकि वो प्रीपेड सिम्स हैं और प्रीपेड सिम जो है वो अभी और जो है जांच का सामना करना पड़ेगा। वो सिम जिनके पास है उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद वो चलेंगे। और इंटरनेट तो नियमित रूप से बंद ही है, तो इसलिए कम्युनिकेशन ब्लॉकेट को 100% इस वक्त खत्म होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी लोगों को दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक दूसरे के साथ संपर्क करना, या कभी आग की दुर्घटना होती थी तो फायर ब्रिगेड को कॉल करना होता है, कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस को कॉल करना होता था। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, ये आज की घोषणा से दूर हुई है, लेकिन 100% कम्युनिकेशन ब्लॉकेट खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कुछ बड़े निर्णय लिए जाने।
वैसे आम जनजीवन कैसा है? अभी भी जनजीवन सामान्य है या अभी भी दिक्कतें हैं कश्मीर में?
देखिए, ये तो एक सामान्य सी स्थिति बनी हुई है कई हफ्तों से। दुकानें बंद रहती हैं सवेरे चंद घंटों के लिए, दुकानें जो जरूरी सामान होता है, खाने पीने की सामग्री होती है, लोग वो खरीदते हैं। उसके बाद जो मेन स्ट्रीट्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वो बंद रहते हैं। इसी तरह से मिनी बसेस, ऑटो रिक्शाज और कैब्स जो हैं, टैक्सियां, वो भी नहीं चलती हैं। जो वाहन सड़कों पर नजर आते हैं वो लोगों के अपने वाहन हैं, अपनी गाड़ियां हैं, स्कूटीज और बाइक्स पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये हड़ताल जो है 5 अगस्त से ही जारी है और इसकी कॉल किसी भी ग्रुप ने नहीं दी है। लोग खुद से एक तरह का खामोश प्रदर्शन ये कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्णय लिया गया था 5 अगस्त को, उसके विरुद्ध ये लोगों का एक साइलेंट प्रोटेस्ट समझा जा रहा है।
ये थे श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। कुर्द बलों के साथ समझौते के बाद सीरिया के सरकारी सैनिक उत्तर पूर्व में नए ठिकानों पर पहुंच गए हैं। अब सीरिया के अंदर आ चुके तुर्क सैनिक उनके आमने सामने हैं। उनके आने और अमरीकियों के वहां से हटने की वजह से ही कुर्द सैनिकों को राष्ट्रपति असद से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रूस ने सभी पक्षों को तनाव बढ़ने के प्रति आगाह किया है। BBC संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए दिलनवाज पाशा से।
कुर्द लड़ाकों के साथ समझौता होने के बाद सीरिया के सरकारी सैन्य बल देश के उत्तर पूर्व में स्थित तेल तमेर शहर में दाखिल हुए हैं। उत्तर पूर्व के इस इलाके पर कुर्द बलों का कब्जा है, जो इन दिनों तुर्की का बड़ा हमला झेल रहे हैं। कुर्दों ने अपने सहयोगी रहे अमरीकी सैन्य बलों के यहां से जाने के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के साथ समझौता किया है। अमरीकी बलों के जाने के बाद तुर्की ने इस क्षेत्र में कुर्द बलों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सीरियाई सरकारी टीवी पर तेल तामेर शहर के लोगों को सैन्य बलों का स्वागत करते हुए तस्वीरें प्रसारित की गई हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की तस्वीरें लहराते हुए ये लोग सेना का स्वागत कर रहे हैं और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
النصر لسوريا الله محيي الجيش اليوم انت محيي الصوره من كم سنه هالصوره هاي
वहीं तेल तामेर में घुसे सीरियाई सैन्य बल तुर्की की तोपों की हद में हैं। सीरियाई बलों के सीमा पर पहुंचने को तुर्की ने अभी अफवाह ही बताया है। BBC से बात करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोगान के सलाहकार अलनूर शेविक ने कहा,
If they are to be anywhere in the area, it will be south to the Turkish border and It will be outside our
city. अगर वो इस इलाके में कहीं भी हैं तो वो तुर्की की सीमा के दक्षिण में हैं और हमारे सुरक्षित जोन के बाहर हैं। हम तुर्की की सीमा से सीरिया के 30 किलोमीटर भीतर तक एक सुरक्षित जोन बना रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि वो कुर्द आतंकवादियों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अफवाह ही है। वो सीमा पर नहीं है, हम सीमा पर हैं। इसी बीच यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों के विदेश मंत्री कुर्दों के खिलाफ तुर्की के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए लग्जमबर्ग में जुट रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन ईव ले ड्रियान ने यूरोपीय संघ से तुर्की के सैन्य अभियान की आलोचना करने की मांग की है। उन्होंने कहा,
C'est particulièrement grave parce que les forces démocratiques syriennes aujourd'hui menacées sont nos alliés, ont été nos alliés depuis le début.
ये गंभीर मसला है क्योंकि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो आज खतरे में हैं, वो हमारे मित्र हैं और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं। ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि तुर्की के हमले से विकट मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि फ्रांस चाहता है कि तुर्की को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। देखना यह भी होगा कि सीरिया का मित्र रूस सीरियाई सैन्य बलों की किस हद तक मदद करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान कह चुके हैं कि रूस ने तुर्की के प्रति अभी सकारात्मक रवैया दिखाया है।
सीरिया और तुर्की के बीच तनाव। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जहां आखिरी दौर की सुनवाई हो रही है, वहीं प्रशासन ने आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाने का फैसला किया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दीपावली के मौके पर विवादित स्थल पर दीपोत्सव मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी है, जिसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। अयोध्या से सुनिए समीर आठपत मिश्र की ये रिपोर्ट।
अयोध्या में मंदिर मस्जिद मामले में चल रही आखिरी दौर की सुनवाई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले पूरे शहर में आगामी 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के मुताबिक दीपावली से पहले होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम इससे प्रभावित नहीं होगा। उनके मुताबिक मंदिरों में लोगों की आवाजाही पर भी धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। वहीं फैसले से पहले अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की गर्मी एक बार फिर सुनाई देने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने इस दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान रामलला विराजमान परिसर में भी दीप जलाने की प्रशासन से अनुमति मांगी है, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं,
रामलला जहां पर विराजमान वहां पर अंधेरा रहता है। मैं समझता हूं कि अगर आने वाले दिनों में हमको अनुमति मिलती है और हम मांग करेंगे कि वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को करने की अनुमति दें ताकि हम अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकें भगवान के श्री चरणों में।
लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी याकूब कहते हैं कि यदि दीप जलाने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें नमाज पढ़ने की भी अनुमति दी जाए।
तो मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए तो मैं भी कहूँगा उनसे, इसमें क्या राय है, इसमें दो राय नहीं है, तो सही बात। जब वो परमिशन मांग दे सकते तो मुझे भी परमिशन।
अयोध्या मंडल के आयुक्त मनोज मिश्र का कहना है कि दीप जलाने की अनुमति मांगी जरूर गई है, लेकिन ये देना प्रशासन के हाथ में नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, जो व्यवस्थाएं वहां परंपरागत रूप से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में चल रही हैं, उससे भिन्न अन्यथा कोई चीज यदि कोई भी पक्षकार करना चाहता है तो उसके लिए उसे माननीय न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये मैंने उनको स्पष्ट किया और उसी से उसका समाधान उनको प्राप्त हो सकता है, इस स्तर से उसका कोई समाधान नहीं।
वहीं बाबरी मस्जिद के एक अन्य पक्षकार इकबाल अंसारी कहते हैं कि अब लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार ही करना चाहिए और कुछ नहीं।
जो हमेशा मतभेद जो है होता रहा, जब राजनीति आज जो लोग करते रहे तो लोगों में मतभेद होता रहा, ये वो दिन करीब आ गया है कि कोर्ट के माध्यम से इसको तय होना है, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है, लोग इसमें लगे भी हुए, हो सकता है ये मसला तय हो जाए, जो भी मसला तय होगा उसको हम मानेंगे।
इस बीच अयोध्या में एक और जहां दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले शहर के सुंदरीकरण के लिए तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहीं सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में पुलिस बलों की भी जगह जगह तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम दौर में चल रही सुनवाई 17 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी और माना जा रहा है कि नवंबर तक इस पर कोई फैसला आ जाएगा। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बीच बातचीत के जरिए भी विवाद का हल निकालने की कोई अंतिम कोशिश की जा सकती है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी अयोध्या।
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना सारा जोर लगा रही हैं। हमारी मराठी सेवा के साथी मयूरेश ने एनसीपी के नेता शरद पवार से बात की और पूछा कि क्या धारा 370 को हटाया जाना महाराष्ट्र के चुनाव में एक अहम मुद्दा है।
370 का निर्णय पार्लियामेंट ने दे दिया, पार्लियामेंट ने 370 हटाया। पार्लियामेंट में 370 हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर के एरिया के 3-4 लोगों की एक अलग भावना थी, वो छोड़कर बाकी लोगों ने इसको विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने या कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर करिए करिए और उनको लेकर, और इसलिए हम लोगों ने 370 के खिलाफ कोई नीति ली नहीं। 370 और हटाया, ठीक है, एक डिसीजन ले लिया भारत सरकार ने, इससे फर्क क्या हो गया। 370 हटाने के बाद भारत के अन्य राज्यों को लोगों के वहाँ जाकर कोई खेती वाली प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं था वो मिल गया, और कोई सुविधा वहाँ नहीं थी वो ज़्यादा मिल, अच्छी बात है, इसमें कोई तय नहीं। मगर महाराष्ट्र के चुनाव में कि जहाँ समस्या है किसानों की, जहाँ समस्या है किसानों की आत्महत्या की, जहाँ समस्या है कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट, आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ की खतरे में जा रही, सिक हो रही, वहाँ काम करने वाले मजदूरों की नौकरी जा रही है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, ऐसी कई समस्या महाराष्ट्र की समस्या है। और महाराष्ट्र की सरकार में जो आएगा उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये समस्या हल करने के लिए, और इसलिए ऐसे समस्या के ऊपर चुनाव आज होने की आवश्यकता है, इसमें कोई फायदा नहीं।
लेकिन मोदी अपनी सभाओं में, अमित शाह अपनी सभाओं में आपको चैलेंज कर रहे हैं कि शरद पवार ये बताएं कि उनकी धारा 370 पर भूमिका क्या है,
उसके भूमिका समर्थन की है। 370 हटाया अच्छी बात की, हमारा कहना एक है कि 371 भी हटाइए, वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी हटाने की बात करिए।
आपने आपकी एक सभा में नागपुर में शायद ये कहा कि बालाकोट के जो एयर स्ट्राइक हुए थे उससे पहले एक मीटिंग हुई थी और उसमें सारी पार्टियों ने, जो अपोजिशन पार्टीज भी, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था कि एक्शन हो, तो क्या आपका ये कहना है कि जो क्रेडिट बीजेपी या फिर केंद्र सरकार ले रही है वो क्रेडिट विरोधी पार्टीज और आपका भी है?
हम क्रेडिट देश की बात नहीं करते, ये बात सच है कि देश के होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर वहाँ हम लोगों के सामने सीमा पर क्या होने की संभावना है इसके बारे में एक डिफेंस ऑफिसर को बुलाकर हमें ब्रीफिंग किया गया था। अब ब्रीफिंग करने के बाद इसमें बहस हो गई और इस बहस में सभी राजनीतिक दलों ने यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन किया और भारत की सेना, चाहे हवाई दल हो या अन्य घटक हो या सरकार हो, ऐसी स्थिति में जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं वो कदम उठाइए, वो सभी राजनीतिक दल और देश इनके साथ रहेगा, इस तरह का रिजोल्यूशन किया, क्योंकि यहाँ हम राजनीति नहीं लाना चाहते थे, देश की रक्षा का सवाल है।
लेकिन वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे जाकर हमला किया, 56 इनकी छाती, इसका भी बार बार जिक्र होता है, आज फिर हुआ, कल हुआ, तो क्या आपका ये कहना है कि इसके अपोजिशन पार्टीज भी इस एक्शन में शामिल थी?
रिजोल्यूशन यूनानिमसली हुआ, यानी सब राजनीतिक दल इसमें शामिल थे, सभी ने कहा कि हम इनके साथ हैं, इसका क्रेडिट लेने की बात नहीं है, क्रेडिट लेना हो तो हवाई दल ने लेना, शिवजी उन्होंने दिखाया, हवाई दल दूर रहा और बाकी लोग अपनी छाती ठोकने लगे 56।
ये थे एनसीपी के नेता शरद पवार।
भाइयों और बहनों, मजमा बहुत बड़ा है, इसलिए मुझको शक है कि मेरी आवाज आखिर तक पहुंच जाएगी।
गांधी, जिनकी पहचान है उनके विचार, उनके आंदोलन, जिनकी पहचान है उनका गोल चश्मा, लाठी और उनकी घड़ी, लेकिन गांधी तो बहुत कुछ हैं। बीबीसी हिंदी रेडियो पर सुनिए गांधी की अनसुनी कहानियां मधुकर उपाध्याय से।
सिर्फ एक फिल्मी गाने पर कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, गांधी मुकम्मल नहीं होते, गांधी की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती।
गांधी के 150 साल, नमस्कार भारत में।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं,
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
तो सबसे पहले इस पोस्ट कार्ड को लेते हैं, ये लिखी हमें राजेश कुमार पांडे ने अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि आपका दिन भर कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूँ और इन्हें बहुत अच्छा लगता है, दुनिया जहान कार्यक्रम भी बहुत रोचक है, अगर हो सके तो मंगोलिया देश पर दुनिया जहां पेश करें तो बड़ी कृपा होगी।
राजेश जी, पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर हम जो दुनिया जहान कार्यक्रम करते हैं वो अक्सर इस हिसाब से करते हैं कि उस दुनिया के, उस देश के बारे में कोई बातचीत हो रही हो, उसकी कोई वजह हो, वहाँ कुछ ऐसी बड़ी घटना हो रही हो जिसको हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें और आपको बता समझा सकें कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मंगोलिया में अगर कभी कोई ऐसी बड़ी घटना हुई तो मंगोलिया की बारी भी ज़रूर आएगी।
एक हमारा ये ईमेल है, रफीक इब्राहिम परकार ने लिखा है इसको, खेड़ रत्नागिरी महाराष्ट्र से। कहते हैं कि शुक्रवार 11 अक्टूबर को रेहान फजल की अमिताभ बच्चन के फिल्मी जीवन पर विवेचना बहुत अच्छी रही। ऐसा लगे कि जैसे सारे दृश्य आंखों के सामने आ गए हों। और शनिवार को इंडिया बोल में आलोक जोशी साहब को सुनकर खुशी हुई। पिछले दिनों गांधी जी पर मधुकर उपाध्याय ने भी कुछ किस्से सुनाए, बहुत पसंद आए। क्या इंडिया बोल की शुरुआत में नेता बोले अभिनेता बोले वाली आवाज़ मधुकर उपाध्याय की है या आलोक जोशी की, ये पूछ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए। वो आवाज़ बहुत सारे लोगों की मिली जुली आवाज़ है, लेकिन जो दो गेस आपने किए इन दोनों में से कोई नहीं है।
अच्छा।
ना तो आलोक जोशी है उसमें और ना ही मधुकर उपाध्याय है।
और अगला ईमेल है हमारे पास गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से। लिखते हैं कि सब ठीक ठाक है विषय पर वसुतुल्लाह खां की पाकिस्तान डायरी में आधी सच्चाई इन्हें नजर आई और भारत की दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत की खबर आदेश गुप्त की जुबानी सुन के बहुत अच्छा लगा। अमिताभ के जन्मदिन पे विवेचना सुन के बहुत सारी अनसुनी बातों से वो रूबरू हुए, धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया गौतम दत्ता जी, आप हमारे पुराने श्रोता हैं और आप हमें अक्सर ईमेल भेजते रहते हैं। और ये जो वसतुल्ला की डायरी है वो आप जानते हैं कि वो एक तरह का तंज है, व्यंग है जिस शैली में वो लिखते हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। और आपने जो कहा आधी सच्चाई है, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि उस सच्चाई का दूसरा आधा हिस्सा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है।
और हमारे पास एक और मेल आया है मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से। सारिका सिंह की सीरिया हालात पर तो भूमिका राय की सलमान खुर्शीद के बयान पर चर्चा दोनों अच्छी लगी, दुनिया जहान भी बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ विषय वस्तु को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत करने का तरीका बीबीसी का जो है वो लाजवाब है।
बहुत शुक्रिया लंबोरिया जी पत्र लिखने के लिए।
और यह है सादिक आजमी ग्राम सभा कोड़िया से। संघर्ष भरे जीवन में विनम्र भाव से खुद को सर्वोच्च पद पे स्थापित करते हुए अमिताभ बच्चन की जो विवेचना है उसके लिए कई सारे हमारे पास वैसे तो मेल आए हैं
जी।
तो सादिक आजमी भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छी लगी।
अमिताभ बच्चन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, अमिताभ बच्चन के कुछ पुराने इंटरव्यूज़ आर्काइव में हमारे पास हैं, और उनकी फिल्मों के बारे में अक्सर बात होती है, उनका एक बहुत छोटा सा राजनीतिक करियर था उस पर भी चर्चा होती है। लेकिन रेहान फजल ने कोशिश ये की थी कि 12-14 मिनट में वो आपको उनके जीवन के हर पहलू के बारे में थोड़ी सी झलक दे सके, ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब रहे।
हाँ, क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां, जैसे और नाम है शंभू शरण का गोरखपुर से, प्रमोद सबरवाल का त्रिकुटा नगर जम्मू से, और ये मेल है हमारे पास नवीन का कानपुर उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि आपसे अनुरोध है कि बीबीसी नमस्कार भारत को गूगल असिस्टेंट के प्ले माई न्यूज सेक्शन पर भी उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही दुनिया जहान और विवेचना कार्यक्रम भी आप यूट्यूब चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, ये दोनों सुझाव बहुत अच्छे हैं, और इस तरह के बीसियों सुझाव हमें मिलते रहते हैं। लोग व्हाट्सएप पर भी चाहते हैं, लोग शेयर चैट पर चाहते हैं, लोग तरह तरह के नए प्लेटफॉर्म, हमें लोग ये सुझाव भी देते हैं कि आप टिकटॉक पर क्यों नहीं हैं। आखिर कुछ सीमाएं हैं और ये इतना आसान नहीं होता कि हम जब चाहें हर प्लेटफॉर्म पर हों, लेकिन इस वक्त बीबीसी हिंदी तकरीबन 15 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के लिए उपलब्ध है, जहाँ लोग हमें सुन सकते हैं, हमें ट्यून इन पर सुन सकते हैं, ऑडियो बूम पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है कि हम और प्लेटफॉर्म्स पर भी आएं, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर होगी।
रामपाल सिंह तोमर पश्चिमी दीक्षिताना गोला गोकर्जनाथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। कहते हैं कि जब वसुतुल्ला खां का प्रोग्राम चल रहा हो तो प्रसारण एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संयोग की बात है कि आपको एक आध बार ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसी इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती कि ऐसा हो सकता है। ये संयोग रहा होगा कि जब आप सुन रहे होंगे उसी वक्त
जी
कोई गड़बड़ी हुई होगी।
असद अली जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि बीबीसी के ज़्यादातर जो श्रोता हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और हम इनका पत्र शामिल करें इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बीबीसी के जो प्रोग्राम है वो सब इन्हें बहुत पसंद हैं।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप डाक से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो ईमेल एड्रेस वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय मूल के अमरीकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कुर्द बलों के साथ समझौता होने के बाद सीरियाई सरकार ने उत्तर पूर्वी इलाके में तुर्की के हमलों का जवाब देने के लिए सैनिक तैनात किए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे रवि प्रकाश। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।